नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरांधश ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज एकादशी है, तो हर एकादशी में प्रभुपाद लीलामृत का रीडिंग करते हैं या पाठ करते हैं, तो मैं भी आज पढ़ूंगा लीलामृत को। तो हम जानते हैं कि ये जो प्रभुपाद लीलामृत है ये भागवतम से क्या है, अभिन्न है। भागवतम और भगवद्गीता, भगवद्गीता हमें संबंध ज्ञान प्रदान करती है, लेकिन यदि अभिधेय और प्रयोजन के बारे में जानना है किसी को, तो उसको भागवतम का आश्रय लेना चाहिए। तो भगवद्गीता क्या है? भगवद्गीता में भगवान अंतिम उपदेश प्रदान करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम रज एकले ईश्वर कृष्ण या कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए कृष्ण कहते हैं मेरे अकेले की शरण ग्रहण करो। तो वहां कोई कह सकता है कि बहुत घमंड है भगवान में, वो बहुत जोर शोर से कह रहे हैं मैं हूं अकेला। तो भगवान वहां कहते हैं कि मेरे एकमात्र शरण ग्रहण करो, लेकिन कैसे शरण ग्रहण करो वो कृष्ण प्रस्तुत नहीं करते। उसके लिए हाँ क्या है, श्रीमद् भागवतम है। इसलिए आचार्यगण कहते हैं ये जो भगवद गीता का ये जो श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम रज, उसके लिए कोई आइडियल उदाहरण वो श्लोक किसी को लागू होता है तो केवल ब्रज की जो गोपिकाएं हैं उनके लिए लागू होता है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में पढ़ेंगे तो गोपिकाएं सबको छोड़कर कृष्ण के पास पहुंचती हैं और भगवान उनको बड़ा प्रवचन देते कि चले जाओ वापस। हाँ, और वहां उन गोपिकाओं ने सब प्रकार के जो श्रृंखलाएं हैं, ये जो धर्म है ना, शरीर का मन का सामाजिक धर्म है, स्त्री का धर्म है, पति का धर्म है, पत्नी का धर्म है, पुत्र का, कितने सारे धर्म है। हमें तो हिंदू मुस्लिम में हम लड़ाई करते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे धर्म है, लेकिन गोपिकाओं ने सारे धर्म की जो श्रृंखलाएं हैं, भगवान उस श्लोक में कहते हैं दुर्जर गेह श्रृंखला, ये जो गेह आसक्ति की श्रृंखलाएं ना गोपिकाओं, उनको बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति भी नहीं काट पाते, लेकिन आप जैसी जो ब्रज की स्त्रियां हो आपने उसको क्या कर दिया, उस श्रृंखला चैन को काट डाला है और मेरे तरफ दौड़ के आ गई हो, या मेरे प्रति पूर्ण आसक्ति को उजागृत या जागृत कर लिया है। तो भगवान वहां कहते हैं कि वास्तव में सर्वधर्मान किसने किया है, तो केवल किसने किया है, गोपिकाओं ने किया है। इसलिए भगवान ये जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है उस समय भगवान बैठ जाते हैं हाँ, और गोपिकाएं उनके लिए वस्त्र डालती हैं, कृष्ण बैठते हैं और वो देखते हैं कि अच्छा सारे गोपिकाएं बैठी हुई हैं, तो भगवान भगवद गीता का उपदेश स्मरण करते हैं। कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि अहम्, जो जिस भावना से मेरे शरण ग्रहण करेगा मैं भी अकॉर्डिंग उसी की अनुरूप उससे आदान प्रदान करता हूं। तो लेकिन वहां वो श्लोक फेल हो जाता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, वो गोपिकाओं को लागू नहीं होता, क्योंकि गोपिकाएं भगवान कहते हैं कि इतना अधिक आपने आपका मेरे प्रति प्रेम और सेवा की भावना है कि उसके बदले में मैं कुछ दे नहीं सकता। ताम सतैव भजा हमें हम, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये बाकी भक्तों को हो सकता है। लेकिन जैसे ही वृंदावन के भक्तों की बात आती है तो वहां ताम सतैव भजा में हम लागू नहीं होता, तो वहां कृष्ण हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते और क्या कहते हैं, न पा रहे हम कि हे गोपिकाओं आपके जो सर्वोच्च प्रेम और शरणागति की जो भावना है, सेवा की भावना है, उसको उसके बदले में मैं कुछ नहीं दे सकता, और उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए हाथ जोड़कर कृष्ण कहते हैं कि मैं आपके इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, सदैव आपका ऋणी बना रहूंगा। इसलिए तो एक बार ब्रह्मा ने जब इस लीला को देखा था, कौन सी लीला को, पूतनावध की लीला को देखा कि अरे ये कृष्ण जो वृंदावन के हैं कैसे हैं, ये जो स्तनपान कराने के लिए अपने स्तन को विष का लेप करके ये आए थी कृष्ण को मारने के लिए, ऐसे एक स्त्री को भी भगवान ने क्या बना दिया, अपनी मां का स्थान दिया गोलोक वृंदावन में। तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं अपनी एक प्रार्थना में भागवतम के दशम स्कंद के कि ये जो कृष्ण है ये सर्वसाधारण पूतना ने इस प्रकार की सेवा की है, उसको इतना बड़ा स्थान दे दिया, तो भगवान के पास क्या है उन लोगों को देने के लिए। कौन से लोग है वो, वृंदावन वासी गोपिका है, उनको क्या देंगे। यदि टॉप मोस्ट प्लेस इसको दे दिया और जिन्होंने अपना मन शरीर तन सब कुछ कृष्ण को अर्पित किया है या कृष्ण के लिए जीवित है, कृष्ण के आनंद के लिए, उनको क्या दे सकते हैं कृष्ण। इसलिए कृष्ण ब्रह्मा का वाक्य स्मरण करते हैं और कहते हैं मेरे पास आपको देने के लिए नहीं है। इसलिए भगवान सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो वो ब्रजवासियों से करते हैं, और ऐसे ब्रजवासियों का सबसे बड़ा धन कुछ है हाँ, क्या है ब्रजवासियों का धन, क्या है, कृष्ण नहीं है हाँ। शास्त्र कहते हैं ब्रजवासियों का धन है प्रचारक, ब्रजवासियों का धन है प्रीचिंग। वास्तव में प्रचार केवल वही कर सकता है जिसके हृदय में ब्रज की भावना है। तो मैं पढ़ रहा था नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, तो एक सॉन्ग में वो कहते हैं हाँ, ब्रजवासी गण प्रचारक का धन, कहते हैं ब्रजवासी तो ये प्रीचर्स है, या फिर जो प्रचारक है उसका हृदय कैसा है, ब्रजवासी के समान है। तो अल्टीमेट सबसे श्रेष्ठ ब्रजवासी इस युग के हैं, कौन है, श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद ऐसे ब्रजवासी हैं हाँ, जिन्होंने क्या किया, ब्रज को लेके निकल पड़े बाहर, और ब्रज में केवल ब्रज ही पेड़ पौधे ही नहीं है, ब्रज किस चीज से भरा पड़ा है, नाम रूप गुण और लीलाओं से, तो उसको कहते ब्रज। ब्रज ये शब्द इसलिए भी पड़ा कि जहां जहां गौओं ने और गोपिकाओं ने और ब्रज के जो लोग हैं उन्होंने जहां जहां विचरण किया उस स्थान को ब्रज कहा जाता है। और ऐसे जो ब्रजवासी हैं श्रील प्रभुपाद जिन्होंने ब्रज को अपने हृदय में धारण किया और वो वास्तव में निकल पड़े बाहर, ब्रज से बाहर। किसके लिए? कभी कभी क्या होता है, लोकनाथ गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु को लोकनाथ गोस्वामी अपना घर छोड़ के आ गए महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में रह रहे थे और वो जब आए चैतन्य महाप्रभु के पास और महाप्रभु को कहा कि मैं तो आपके संग में ही रहना चाहता हूँ, आपके साथ ही सदैव निवास करना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु को तो और कोई चिंता थी, क्योंकि महाप्रभु कौन है? ब्रजवासी है। महाप्रभु को लगा उधर ब्रज का उद्धार कौन करेगा, तो सबसे पहला डिवोटी भेजा तो वो कौन थे? लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी सोचते हैं कि मुझे क्यों भेज रहे हैं, मैं तो इनके साथ रहना चाहता हूँ, जिनके लिए घर छोड़ा वही व्यक्ति मुझे लात मार के भेज रहा है दूसरी जगह सेवा के लिए। तो वहां वो कहते हैं कि कभी कभी आपने इष्ट की सेवा करने के लिए अपने इष्ट का भी क्या करना होता है? त्याग करना होता है। ये बहुत हाईएस्ट लेवल है डिवोशनल सर्विस का, क्या है, बहुत उन्नत धरातल है। और वही चीज हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद में। श्रील प्रभुपाद ब्रज में आते हैं अपने अंतिम आयु में और ब्रज में आके निवास करते हैं। और वो कौन चाहता है वृंदावन को छोड़ना? सारी जनता, सारी दुनिया कहाँ आती है? वृंदावन आ रही है अभी कार्तिक में। और यहाँ प्रभुपाद, हर कोई सोचता है, लोग घर फ्लैट सब कुछ खरीद लेते हैं वहां, कि अंतिम समय में कहाँ रहेंगे? वृंदावन में रहेंगे। लेकिन वृंदावन में रहकर भी वृंदावन को अपने हृदय में धारण नहीं कर पाते, इसलिए वो व्यक्ति उन्नत है जो चाहे जहां मर्जी रहे, लेकिन वृंदावन का जो वास्तव्य है वो उसके कहां है? हृदय में है। हाँ, तो इस प्रकार से देखें तो श्रील प्रभुपाद ऐसे आचार्य हैं, ऐसे ब्रजवासी डिवोटी हैं कि जिन्होंने ब्रज से बाहर निकले अपने इष्ट की सेवा करने के लिए। उनके इष्ट कौन है? कौन है? अपने गुरुदेव। कौन है? एक शिष्य के लिए सबसे पहले पूजनीय, आराधनीय, परम इष्ट कोई है तो आध्यात्मिक गुरु। और तभी वास्तव में उनकी आराधना करता है तभी क्या प्राप्त होता है? यश प्रसादात भगवत प्रसादो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने अपने गुरु की सेवा के लिए उनका जो एक प्रकार से वास्तव्य है उसको त्यागा और दूर चले गए। तो ये साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि साधारण व्यक्ति जाए और सारे जगत में वृंदावन की स्थापना करे। प्रभुपाद ने वृंदावन को भी स्थापित किया और जहां जहां गए लोगों की चेतना को वृंदावन कॉन्शियसनेस, वृंदावन कॉन्शियस कर दिया। कृष्णा कॉन्शियस तो है, लेकिन सबके मन में क्या भावना आ गई? वृंदावन, वृंदावन, वृंदावन। तो वृंदावन, शास्त्र कहते हैं हरे कृष्ण बोलना और वृंदावन बोलना, इसमें कोई अंतर नहीं है। इतना बड़ा है वृंदावन जो नाम है उसकी महिमा रूप गोस्वामी अपने बुक मथुरा महात्म्य में लिखते हैं। वो कहते इतना ग्लोरियस है ये धाम। तो ऐसे प्रभुपाद जो आचार्य हैं, ब्रजवासी हैं, और वो क्या करते हैं? वृंदावन को अपने हृदय में धारण करते हैं और वृंदावन को सारे जगत में क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। इसलिए भगवान केवल दो स्थानों में निवास करते हैं। वैसे एक ही स्थान में कृष्ण रहते हैं। कहाँ रहते हैं कृष्ण? धाम में रहते हैं। और दो चीजें धाम है, एक तो जो भगवान का मूल धाम जो वृंदावन में है और दूसरा जहां नाम रूप गुण और लीला, ये चार चीजें जहां वाइब्रेट होती हैं, श्रवण की जाती है, चर्चा की जाती है, इन चार चीजों की, वो स्थान भी क्या है? धाम है। और तीसरा भी शास्त्र कहते हैं भगवान के भक्त का हृदय, यह भी क्या है, धाम है, जहां कृष्ण को निवास करना आनंदित होते हैं कृष्ण। सर्वसाधारण व्यक्ति के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, लेकिन भक्त के हृदय में परमात्मा नहीं होते। कौन होते हैं? तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो भक्त के हृदय में भगवान गोविंद या साक्षात कृष्ण निवास करते हैं, उनका ये जो विस्तारित रूप में परमात्मा, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद हैं जो कोई साधारण आचार्य नहीं है, इसलिए प्रभुपाद को साधारण आचार्य या भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, लेकिन प्रभुपाद ऐसे शुद्ध भक्त नहीं है, उनका क्या है, यूनिक स्थान है। जैसे देखो शुकदेव गोस्वामी भी भक्त है, ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज आदि है, नारद मुनि है या शिवजी है, ये भी शुद्ध भक्त है। लेकिन ये सारे कौन सी चीज की आशा करते हैं? ब्रजवास की आशा करते हैं, ब्रज में एंट्री की आशा करते हैं। हाँ, क्योंकि ब्रज की जो भावना है, ब्रज की जो भक्ति है, वो सर्वोच्च है। इसलिए ब्रह्मा भी कहते हैं मुझे क्या बनाओ, पत्थर बना दो। शिवजी भी कहते हैं मुझे भी पत्थर बना दो। एक बार तो इन दोनों ने प्रार्थना की, भगवान कहते चलो बनो पत्थर। ब्रह्मा तो कहते थे कि नंद महाराज के आंगन में मुझे पत्थर बना दो, तो भगवान ने कहा नहीं नहीं। तो फिर उनको कहा बनाया, बरसाना। ये बरसाना ब्रह्मा जी है, चार सर है उनके। और नंदेश्वर पर्वत नंदीग्राम में कौन है, शिव जी है। तो ब्रज में प्रवेश करने के लिए हर कोई लालायित है, इवन लक्ष्मी देवी। दूसरों की बात ही छोड़ दो, साक्षात जो रोज दिन रात पांव दबाती रहती है नारायण का, ऐसी लक्ष्मी देवी भी क्या चाहती है, ब्रज में प्रवेश। तो इससे क्या समझते हैं कि बहुत अलग अलग प्रकार के शुद्ध भक्त हो सकते हैं, लेकिन ब्रजवासियों का जो स्थान है वो क्या है, यूनिक है। उनसे बढ़कर और किसी का स्थान इस संसार में नहीं है। इसलिए ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, ये ब्रज भावना प्रदान करने के लिए है, और जिसको वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने इतनी सरलता से अवेलेबल कराया कि म्लेच्छ यवाना चांडाल सब लोग क्या है, ब्रज को ऐसे अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। तो ये केवल श्रील प्रभुपाद की जो असीम अनुकंपा है, श्रील प्रभुपाद की जो असीम कृपा है, उससे ही क्या है, ये संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए कि प्रभुपाद ये कोई साधारण आचार्य नहीं है। इसलिए प्रभुपाद सावधान करते थे अपने शिष्यों को कि उनके नाम के आगे क्या लगना चाहिए, हमेशा संफाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। उनके नाम से ही देखा जाता है, ये टाइटल से कृष्ण कृपा की क्या है, ये मूर्तिमान विग्रह है। जब कृष्ण कृपा किसी व्यक्ति का रूप धारण करती है तो वो श्रील प्रभुपाद है। तो ऐसे प्रभुपाद जैसे कोई भक्त ना हुआ है, ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति। इसलिए किसी को नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसलिए जो लीलाएं होती है ना वैष्णवों की, या जो भगवान की जो लीलाएं हैं, वो इमिटेशन के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, इंस्पिरेशन के लिए। सदैव उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। थोड़ा भी हमें भावना आ जाए नकल करने की, तो समझ लेना चाहिए कि मेरी चेतना का अभी क्या शुरू हो गया है, पतन शुरू हो गया है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद एक महान आचार्य है, जिनके बारे में सुनना, जिनके बारे में चर्चा करना, ये पवित्र करने वाला है। तो इसलिए भागवता जो अभिधेय देता है, अभिधेय का मतलब है कि भगवान से संबंध पता चला, मैं वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, कि मैं भगवान कृष्ण का सनातन अंश हूं। अरे बाबा ठीक है, पता चला अंश है, लेकिन आगे क्या, आगे क्या अंश है, तो उसको अनुभूति करनी है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो श्रीमद् भागवतम में है। हाँ, भागवतम वो ग्रंथ है जहां भगवान और उनके भक्तों के प्रेममय सेवा का आदान प्रदान, वो भागवतम है। तो भागवतम मीन्स जहां भगवान और भक्त के सेवा का आदान प्रदान, तो ये प्रभुपद लीलामृत भी उससे अभिन्न है। आगे किसी कल्प में कोई भागवत लिखेंगे व्यासदेव, तो क्या होगा, आगे किसका नाम ऐड हो जाएगा उसमें, श्रील प्रभुपाद का भी। जैसे हम अलग अलग भक्तों का पढ़ते हैं, भागवत क्या है, भक्त चरित्र से भरा पड़ा है, तो उसी प्रकार से ये प्रभुपाद लीलामृत है जो हमें सुनना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद के हम आंदोलन में है तो हमें प्रभुपाद के बारे में सुनना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और समझना चाहिए। बल्कि आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ कि जिनके बारे में इतना कुछ लिखा गया हो। आप जानते हैं प्रभुपाद के ऊपर कितने ग्रंथ हैं, 200 से भी ज्यादा ग्रंथ लिखे हैं। कितने, 200 से भी ज्यादा। अकेले उनके एक शिष्य है सत्स्वरूप दास गोस्वामी, उन्होंने 30 या 40 से ज्यादा ग्रंथ केवल प्रभुपाद के ऊपर लिखे हैं। और हमें बोला जाए, हमें कहा जाता है कि व्यास पूजा आ रही है, जरा ऑफरिंग लिख दो। क्या लिखो व्यास पूजा के लिए, ऑफरिंग लिखिए एक पेज। वो 10 बार अनाउंसमेंट किया जाता है, मैसेज भेजे जाते हैं, डेट्स भी निकल जाती है। तो हम सोचते रहते व्यास पूजा ऑफरिंग लिखनी है, कितना हमारे लिए कठिन हो जाता है। हाँ, इससे पता चलता है, प्रीति का पता चलता है आपके वाणी और लेखनी से। तो उसी प्रकार से ये जो सत्स्वरूप दास गोस्वामी थे, प्रभुपाद के एक शिष्य अभी भी हैं, जिन्होंने क्या लिखा, ये प्रभुपाद लीलामृत की रचना की है। क्योंकि प्रभुपाद अप्रकट हो गए तो फिर उनके शिष्यों को लगा कि अभी प्रभुपाद के बारे में कोई ग्रंथ होना चाहिए, बायोग्राफी होना चाहिए प्रॉपर, जो इस आंदोलन के भक्तों को प्रभुपाद के बारे में अवगत कराए और प्रभुपाद के भक्तों का पोषण करे। तो फिर जीबीसी सारे चर्चा कर रहे थे, कौन करेगा कौन करेगा कौन करेगा, तो उनको एक ही नाम आगे आया, और वो कौन थे, सत्स्वरूप दास गोस्वामी। ये लीलामृत की रचना और चैतन्य चरितामृत की रचना का स्टाइल एक है। चैतन्य चरितामृत में जब वर्णन आता है कि वृंदावन में हरिदास पंडित, गदाधर पंडित के जो शिष्यगण हैं परंपरा में, वो सब लोग रोज गोविंद देव के मंदिर में बैठकर चैतन्य भागवत को सुना करते थे, रोज सुनते थे महाप्रभु की लीलाएं। तो फिर उन्होंने देखा कि ये चैतन्य भागवत तो महाप्रभु के नवद्वीप की लीलाओं का वर्णन है, शुरुआत की लीलाओं का वर्णन है। वो पूरा ग्रंथ पूरा हो गया, भक्तों को लगा अच्छा हमें तो जगन्नाथपुरी की लीलाओं को भी सुनना चाहते हैं, और भी जो लीलाएं महाप्रभु की हैं, पूरा अंत्य लीलाएं, तो उसका वर्णन उस ग्रंथ में नहीं था। तो लेकिन सबने थोड़ा थोड़ा कहां से सुना था, तो सबने सोचा कि कौन है वो भक्त जो इसको ये दे सकता है, ग्रंथ रूप दे सकता है। तो सबने सोचा ये तो कृष्णदास कविराज है। कौन है, कृष्णदास कविराज। तो कृष्णदास कविराज के पास गए पूरे वृंदावन के वैष्णव और जाकर उनको निवेदन किया कि आपके कंठ में तो महाप्रभु की लीलाएं भरी पड़ी है। जैसे शिव जी के कंठ में क्या है, विष है, और हमारे कंठ में क्या है, हम खुद को ही पता है। तो लेकिन कृष्णदास कविराज के कंठ में क्या था, गौर लीला थी। कहां से आई थी उनके कंठ में, जब रघुनाथ दास गोस्वामी रोज 3 घंटे से ज्यादा राधा कुंड के तट पर बैठकर गौर लीलामृत की वर्णन चर्चा करते थे, तो ये कृष्णदास कविराज उनके सामने बैठकर मानो पी रहे हैं, हाँ जैसे बोतल या फिर ग्लास से पीते हैं, ऐसा वो गौर लीला पीते थे। फिर उनको बोला कि आप दे सकते हो इसको ग्रंथ रूप। तो सारे वैष्णवों का निवेदन जब सुना तो फिर इन्होंने मदन मोहन को अप्रोच किया और मदन मोहन के गले से माला गिर पड़ती है कि राइट भक्तों को चूज किया है सही काम के लिए। हाँ, तो फिर वो महान ग्रंथ प्रकट होता है चैतन्य चरितामृत। वैसे ही प्रभुपाद अप्रकट होने के बाद सेम वैसे ही हुआ, भक्त आपस में चर्चा करते रहते थे, अच्छा प्रभुपाद की वो लीला ये सब ऐसा बात करते थे। तो फिर सोचे कि कौन भक्त है, तो एक भक्त सत्स्वरूप दास गोस्वामी, उनके पास सारे जेबीसी के डिवोटीज गए मायापुर में, कहा महाराज आप ये काम कर सकते हैं, आप क्या कीजिए प्रभुपाद के ऊपर लिखिए। हाँ, तो महाराज ने कहा कि आप यदि आदेश देते हैं, हाँ इसको स्वीकृति देते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो इस महानतम कार्य को मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो इस कार्य को स्वीकार करते हैं और आप में से जिसने भी प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा है, कितने लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा बहुत अधिकतर लोगों ने, हाँ आपकी आंखें खुली रह जाएंगे। भागवतम पढ़ते हुए आंखें बंद होती है लेकिन लीलामृत पढ़ते प्रभुपाद का तो क्या रहती है, आंखें खुली रहती है। तो ऐसा अद्भुत ये लीलामृत है प्रभुपाद का कि मानो आंखों देखा हाल, सुना है ना आपने आंखों देखा हाल, जैसे संजय सुना करता था धृतराष्ट्र को, या लाइव टेलीकास्ट होता है क्रिकेट आदि, तो वैसे ही मानो प्रभुपाद चल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और सत्स्वरूप गोस्वामी पेन पेपर लेके उनके पीछे पीछे खड़े हैं। पूरा जीवन ऐसा लिखा है, ऐसे लगता है, ऐसा वर्णन कि व्यक्ति चकित हो जाता है कि कोई व्यक्ति कैसे लिख सकता है, लेकिन यह संभव है। पंगुम लंगायते गिरिम यत्र पहातम मंदे श्री गुरु दीन तारिणम, केवल एक ही बल है। आध्यात्मिक जीवन में कोई शारीरिक बल, भौतिक योग्यताएं काम आने वाले नहीं है, उसके लिए केवल आध्यात्मिक बल चाहिए, आध्यात्मिक आशीर्वाद चाहिए, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने योग्यता से भी बड़े बड़े कार्य करता है। तो ऐसे सत्स्वरूप दास गोस्वामी जो अमेरिका में जन्मे थे, लेकिन उन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना की लीलामृत, या अभी हजारों सालों के लिए प्रभुपाद ने कहा मेरे ग्रंथ 10,000 साल तक रहेंगे, तो प्रभुपाद के बारे में भी जो लिखा है वो कब तक रहेगा, 10,000 साल तक। तो सोचो कितनी बड़ी, कितना बड़ा कार्य ये प्रभुपाद के एक शिष्य थे सत्स्वरूप दास गोस्वामी उन्होंने किया है। बल्कि वो उससे ही नहीं रहे, हाँ कितने हजारों पेजेस का है, 2,500 पेज का बुक है, एक ऐसे दो बुक्स है, ये एक बुक 1100 पेज का है, फिर दूसरा बुक भी 1100 पेज का है। हाँ, तो हमें कुछ हो या ना हो, एक बार तो कम से कम हमें क्या करना चाहिए, प्रभुपाद लीलामृत को पहले पेज से अंतिम पेज तक जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ, अन्यथा फिर इस मूवमेंट में कैसे है। इसलिए भक्तों का सबका अनुभव यही है कि जब भक्ति में लगते हैं शुरुआत के दिनों में तो बहुत कूदते फांदते हैं, चिल्लाते हैं। जैसे एक भक्त कहते थे, नया नया मुल्ला बहुत चिल्लाता है, जब मुल्ला ज्वाइन करता है ना मस्जिद, पूरा लाउड माइक हो या ना हो, प्रार्थना ऐसे जोर जोर से गाएगा, चिल्लाएगा। वैसे हम सबके साथ है, नए नए होते तो बहुत चिल्लाता है लेकिन बीच बीच में उत्साह कम हो जाता है, ढीले हो जाते हैं, लगते हैं कि कहाँ फंस गया, हाँ परेशान हो जाते हैं, समस्याएं आती रहती है भक्तिमय जीवन में। तो सारे भक्तों का यही अनुभव है, जैसे ही उत्साह कम होता है, प्रेरणा कम हो जाती है, तो भक्त कौन सा बुक उठाते हैं, प्रभुपाद लीलामृत। प्रभुपाद लीलामृत उठ के पढ़ने लगता है ना भक्त, पुनः उसको लाइफ मिल जाता है, जीवन मिलता है। हमें याद है हम शुरुआत के दिनों में दिल्ली टेम्पल का टेरेस है ब्रह्मचर्य आश्रम के 2-3 फ्लोर्स के ऊपर ऊपर जाते थे, किसी के पास कुछ सेवा नहीं है, उस दिन देखते थे कि आज किसके पास क्या सेवा है, नहीं लीलामृत उठा देते, 5-6 भक्त, 5-5 घंटे, एक पढ़ता था सारे सुनते थे, वो थक गया दूसरे को देते थे, वो पढ़ता था बाकी सुनते थे। ऐसे लीलामृत कुछ ही महीनों में हम पूरे बुक खत्म करते थे लीलामृत, और एक बार नहीं कई बार पढ़ते थे सुनते थे। तो इस प्रकार से यदि फिर से लाइफ चाहिए कृष्ण भावना में, भक्ति में प्रेरणा चाहिए, तो ये प्रभुपाद का जो लीलामृत है जो हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। हाँ कई बार हो सकता है कि बहुत बड़ा बुक है, उसको देख के ही मूर्छित हो जाते हैं। कई लोग तो भागवतम का पहला कांड देख के हाथ ही नहीं लगाना चाहते, उसका साइज ही इतना बड़ा है, मानो जैसे कोई पहलवान आगे से आ रहा हो और आप दुबले पतले उसके सामने से गुजर रहे हो, तो ऐसी स्थिति है। हाँ, लेकिन उसको उठाएंगे ना, हमें भी महान बल मिलेगा। साइज में हम पतले हो सकते हैं लेकिन आत्मा का कोई साइज नहीं, बोला है क्या पतला दुबला है, इसका आत्मा पतला है, उसका आत्मा दुबला है, इसकी आत्मा इतनी केजी की नहीं, सारी आत्माएं कैसी है, एक जैसी है। तो उसके लिए आध्यात्मिक बल आता है आत्मा के माध्यम से, आत्मबल, और वो प्राप्त होता है आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद से या सेवा से। इसलिए अब देखो महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो पूरी सेना खड़ी थी दोनों लाइन में, महाभारत में तो अमेजिंग वर्णन है, वो पूरा लाइन वहां खड़ा था और यहाँ भी ये सब लोग खड़े थे, अर्जुन कृष्ण आदि युधिष्ठिर। तो ये जो अर्जुन है ये उतर जाते हैं और चलने लगते हैं उधर, युधिष्ठिर भी, और वहां जाते हैं उस सेना की ओर जाते हैं। सारे चकित है कि वहां क्यों जा रहे हैं, वहां जाते केवल किस चीज के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, द्रोणाचार्य आदि को, अपने जो गुरु है भीष्म आदि को प्रणाम करके वापस आते, फिर उनको बल मिलता है। हाँ, और कृष्ण थे ही उनके साथ। तो इस प्रकार से ये जो प्रभुपाद लीलामृत है जो हम बारंबार पढ़ते हैं सुनते हैं, वो कब केवल एकादशी को ही खोलने का विषय नहीं है, एकादशी के लिए अच्छा है, लेकिन बीच बीच में भी हमें अपने जीवन में रूटीन बनाना चाहिए कि रोज थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद के बारे में पढ़ता हूँ। तो ऐसे प्रभुपाद के जो शिष्य है, हर एक शिष्य ने लगभग एक एक ग्रंथ लिखा है। तो इस प्रकार से ये जो प्रभुपाद लीलामृत है जिसको हम पढ़ते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं, तो कुछ जो पैराग्राफ से मैं आज पढ़ता हूँ, वर्णन आता है ये प्रकरण 11-19 और अध्याय का नाम है विचार उपवन। तो 15 दिन तो भूल जाते बीच में क्या हो गया था, किसी कभी कभी तो हमें यहाँ पता ही नहीं होता कि ये कहाँ रखा था, ये थ्रेड है ना, और पिछले वाले वक्ता ने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ खत्म किया था। तो कई बार तो हमने जहाँ से वो खुल गए वहां से कहते कि पढ़ो, ऐसे कई बार हुआ है, लेकिन अभी कुछ एक दो महीने से मेंटेन कर रहे हैं हमारे परमात्मा उसको। तो यहाँ बीजारोपण, प्रभुपाद अमेरिका गए हैं और फिर वहाँ जो स्टोर फ्रंट है न्यूयॉर्क में उसमें निवास कर रहे हैं शायद। तो ये पढ़ता हूँ मैं, तो अब ध्यान से सुनिए। तो यहाँ उनके भक्तों का वर्णन आता है जो प्रभुपाद से जुड़े थे। चक बार्नेट 18 वर्ष का था, अभी एक एक लड़का जो जुड़ा प्रभुपाद से जो आगे चलकर महान महान भक्त बने, उसमें से एक का नाम क्या था, चक। चक बार्नेट 18 वर्ष का था, उसकी तलाकशुदा माँ, हिंदी बड़ा टफ है, तलाकशुदा माँ हाल में ही ग्रीनविच विलेज आ गई थी, जहां वो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के अंतर्गत मनोविज्ञान का अध्ययन कर रही थी। चक अपनी माँ के घर से लोअर ईस्ट साइड में 12वीं सड़क के एक मकान में आ गया था। कितना डिटेल लिखा है, हमें ये याद नहीं रहता अशोक एंग्लियो में सी कहाँ है, बी कहाँ है। हाँ, वैसे वो लिखते हैं, जहाँ उसके पड़ोस में एलेन गिंसबर्ग और हिप्पी समुदाय के अन्य कवि और संगीतकार रहते थे। वो एक प्रगतिशील जाज बंशीवादक था जो नगर की कई व्यवसायिक मंडलियों के साथ काम करता था। वह 6 साल से हड्डियों का अभ्यास करता आया था और कुछ समय पहले से LSD पर प्रयोग करने लगा था। उसे कमलों और संकेंद्रीय वृत्तों के दर्शन होते थे, लेकिन नशा उतरने के बाद वह इंद्रियता में पूरी तरह लिप्त हो जाता था। चक का एक घनिष्ठ मित्र हाल में ही ग्रीष्म ऋतु में एकाएक समलिंग कामी बन गया था, फलस्वरूप चक घृणा से भर गया था और सनकी हो गया था। किसी ने चक को बताया कि कोई भारतीय स्वामी नगर के पुराने इलाके में 2nd Avenue में रह रहे थे। अतः एक दिन अगस्त में वो पुराने मैचलेस गिफ्ट्स भंडार की खिड़की के सामने आया। ये इसका समझ में आया आपको, एक भक्त था जो वहां निवास कर रहा था, एक युवा भक्त तो नहीं बना, लेकिन धीरे धीरे उसको पता चला कि एक इंडियन स्वामी है पुराने इलाके में रहते हैं 2nd Avenue में। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते, क्योंकि उस समय ये पूर्व का दर्शन या पूर्व की जो संस्कृति है भारतीय आदि ना, उसके बारे में जानने के लिए वहां के नवयुग युवकों में अमेरिका के बहुत जिज्ञासा थी, वो बहुत उत्साहित रहते थे, तो यहाँ से संबंधित जो भी किताबें हैं वो सब पढ़ते रहते थे और ढूंढते थे कि यहाँ की चर्चा वर्ण करने वाला व्यक्ति या समझाने वाला व्यक्ति हमें कहाँ मिलेगा। तो वहाँ एक रेस्टोरेंट था जिसका वर्णन पहले भी हुआ है लास्ट रीडिंग में, तो वहाँ उस रेस्टोरेंट में जो भी लोग बैठते थे वो आपस में चर्चा करते थे इसी के बारे में। तो इनको पता चला कि एक पुराने इलाके में एक स्वामी जी आए हैं भारत से, केसरिया रंग का वस्त्र धारण करते हैं और वो वहां रह रहे हैं। तो ये वहां तक पहुंचा, खिड़की तक पहुंचा, प्रभुपाद रहते थे न्यूयॉर्क के 26 सेकंड एवेन्यू में, स्टोर फ्रंट जो दुकान के अगला भाग होता है उस पर रहते थे। और वो दुकान, पहले एक दुकान थी वो, और वो दुकान का नाम क्या था, मैचलेस गिफ्ट। तो प्रभुपाद रह भी रहे थे तब भी उसी का नाम वही था, वो नाम वहां से हटाया नहीं गया था। हाँ, उसी नाम का बुक भी है, एक अनुपम उपहार, तो हिंदी में है अनुपम उपहार। तो प्रभुपाद वहां रहते थे और ये जो लड़का है अभी ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया, स्टीव गारिनो जो न्यूयॉर्क के एक अग्निशामक कार्यकर्ता का लड़का था, अभी दूसरा लड़का, इसी नगर में पलकर बड़ा हुआ था और उसने ब्रुकलिन कॉलेज से 1961 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। अपने पिता से प्रभावित होकर वह नौसेना में भर्ती हो गया था। वहां वह 2 वर्ष तक फौजी अनुशासन झेलता रहा और हमेशा उस दिन की प्रतीक्षा करता रहा जब उसे लोअर ईस्ट साइड में अपने मित्रों से फिर मिलने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अंत में राष्ट्रपति कैनेडी की मृत्यु के कुछ महीनों के बाद वह सम्मान पूर्वक सेवानिवृत्त कर दिया गया। वह अपने माता पिता से मिलने तक नहीं गया और सीधे लोअर ईस्ट साइड के लिए चल पड़ा, जो उस समय तक उसके मन में बड़ी स्पष्टता से संसार का सबसे अधिक रहस्यवादी स्थान बन गया था। फ्रांज काफ्का और दूसरों के साहित्य से प्रभावित होकर वह कहानियां और छोटे उपन्यास लिखने लगा था और चेतना पर शोध और प्रयोग के लिए वह LSD लेने लगा था। तो वह अध्यात्म में, वो सोचते थे अध्यात्म में उन्नत होना उसका मतलब कैसे, LSD लेना। जब नशा चढ़ता है तो व्यक्ति कहाँ है, आकाश में चढ़ता है, ऊपर ऊपर जाता है। जैसे वर्णन आया कि पिछला वाला भी वो LSD लेता था और LSD लेके इतना वो नशा घूमता रहता था कि उसको कमल नजर आते थे या ऐसे वृत्त नजर आते थे, राउंड शेप के आकार। हाँ, जैसे प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे लॉस एंजलिस में, तो प्रवचन के बाद प्रभुपाद ने कहा एनी क्वेश्चन, तो एक लड़की खड़ी हो गई, प्रभुपाद मैं जो जप करती है ना, करती हूँ ना, तो कुछ ऐसे लाल लाल बिंदु नजर आते हैं मुझे। प्रभुपाद ने कहा जप करती रहो, वो सब चला जाएगा। तो वैसे ही इनके साथ है। तो यहाँ ये भी वहां पहुंचने के लिए तत्पर होता है, LSD ग्रहण करता है। जा संगीतज्ञ जान कॉल्ट्रेन के एक रिकॉर्ड, ये लव सुप्रीम ने स्टीव को ये सोचने को प्रोत्साहित किया कि ईश्वर का वास्तव में अस्तित्व है। जीवन यापन भर के लिए पैसा कमाने के उद्देश्य से स्टीव ने जन कल्याण कार्यालय में नौकरी कर ली थी। तो ये स्टीव किसका नाम है जिसने ये बुक लिखी है, सत्स्वरूप दास गोस्वामी जन कल्याण कार्यालय में काम करते थे। एक दिन तीसरे प्रहर खाने के अवकाश में सेकंड एवेन्यू में घूमते हुए उसने देखा कि मैचलेस गिफ्ट स्टोर की खिड़की में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा लगा था जिसमें घोषणा थी, घोषणा मीन्स अनाउंसमेंट, भगवत गीता पर भाषण AC भक्ति वेदांत स्वामी। कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगा था बाहर, प्रभुपाद जा रहे थे बाहर खिड़की के पास कागज में, और प्रभुपाद ने वहां अपने टाइपराइटर से, उसका फोटो भी है लीलामृत में, टाइपराइटर से टाइप किया और वहां डाला था कि भगवत गीता पर लेक्चर बाय AC भक्ति वेदांत स्वामी, और डेज लिखे थे, मंडे था, वेडनेसडे था और फ्राइडे था। ऐसे 3 दिन में प्रभुपाद प्रवचन करते थे और जो भी आ जाए सबके लिए द्वार क्या होते थे, खुले थे प्रभुपाद के। अब ये चक कहता है, अंत में मैं सेकंड एवेन्यू और फर्स्ट स्ट्रीट ढूंढ निकाली और खिड़की से झांककर मैंने देखा कि अंदर संकीर्तन चल रहा है और कुछ लोग दीवार से लगे बैठे थे। तो सोचो फर्स्ट एंट्री, आपको एंट्री याद है आपके जीवन में, पहली बार आप इस्कॉन टेम्पल में आए तो क्या हो रहा था, किसको किसको याद है, याद है याद रखिए हमेशा। हाँ जैसे वो बताते हैं कि वो पहली बार जब आए उस खिड़की से देखा, इतना कुछ सुना है, वो केसरिया रंग वाले साधु जो पुराने वहां से आए भारत से, तो देखा अंदर करते क्या है। हाँ तो अंदर देखा कि क्या है, संकीर्तन चल रहा था और सारे लोग दीवार का सहारा लेके बैठे हुए थे। जैसे सबसे अच्छी जगह होती है भागवत क्लास में बैठने की, कौन सी? दीवार। अधिकतर भक्त सोचते आगे का भर जाए, दीवार का जो मिल जाए तो पूरा सट के बैठेंगे, ध्यान पूर्वक सुनने के लिए नहीं, बीच बीच में डुबकी लगाने के लिए, नीचे जाओ ऊपर आ जाओ जैसे जल में। हाँ और फिर इन्होंने देखा कि सारे लोग कीर्तन तो कर रहे हैं लेकिन सट के बैठे हुए हैं दीवार को, तो वो कहते हैं मेरे बगल में फुटपाथ से कुछ मध्यवर्गीय लोग अंदर झांक रहे थे और ही किए जा रहे थे। कुछ लोग तो हंस रहे थे, जैसे महाप्रभु जब कीर्तन करते थे नवदीप में तो चैतन्य महाप्रभु किसी को अलाउड नहीं करते थे। एक साल तक चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के आंगन में कीर्तन किया और वो आंगन चारों ओर से बंद था और डोर लगाते थे बड़े, तो एंट्री केवल उसको थी जो शुद्ध भक्त हो। कौन? शुद्ध भक्तों को ही कीर्तन में अलाउड है, संकीर्तन में, क्योंकि वो महाप्रभु का संकीर्तन है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनको एंट्री नहीं थी, वो दरवाजे के छेद थे उसमें से देखते थे और वहां से गालियां देते थे, चिल्लाते थे, शाप देते थे, कहते थे ये लोग शराब लेके आते रात को और अंदर पीते और फिर क्या कहते, चिल्लाते रहते हैं। तो ये कहते हैं कि बाहर से कुछ लोग आते थे, देखते थे ये क्या चल रहा है और हंसते हुए जाते थे। मैं उनकी ओर मुड़ा और हाथ जोड़कर मैंने पूछा, क्या ये वही स्थान है जहाँ एक स्वामी जी रहते हैं? उन लोगों को पूछा जो हंस रहे हैं अंदर वालों पर, तो वो यह लिखते हैं ही करते हुए बोले, हाँ तीर्थयात्री आपकी तलाश पूरी हो गई। वो लोग इसको कह रहे हैं, चक को कह रहे हैं कि आप तीर्थयात्री फाइनली अपने स्थान में पहुंच गए हो, अपने गंतव्य में। इस उत्तर से मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगा कि ये सच है। ब्रूस और चक एक दूसरे से अनजान थे और एक दूसरे से केवल दो ब्लॉकों की दूरी पर रहते थे। अपने मित्र के सुझाव पर ब्रूस भी स्टोर फ्रंट पहुंचा, तो ब्रूस ब्रह्मानंद बने आगे चल के। तो वो अभी ब्रूस बोलते हैं, पहले तो चक ने बोल दिया अपना फर्स्ट एंट्री, अभी ब्रूस कहते हैं मैं हरे कृष्ण की खोज में था, अपना स्थान छोड़कर मैं एवेन्यू बी पहुंचा। तो हर कोई व्यक्ति किसकी खोज में है, किसकी खोज में है? कृष्ण की खोज में है। मैंने पहले भी एक स्टोरी बताई थी, एक सन्यासी थे इस्कॉन में, अभी भी है, वो कहते मैं कैसे इस्कॉन से जुड़ा। अपने पूर्व समय में युवा थे तो उस समय उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, हाँ तो वो जो लड़की है वो भारतीय जो कृष्ण मूर्ति एक राइटर है इंडियन, साउथ इंडियन, उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं स्पिरिचुअल बुक्स लिखी हैं, तो उनकी ग्रंथ वो पढ़ते रहते थे और उसको ये कृष्ण नाम इतना अच्छा लगा कि उसने एक कुत्ता पाला था, उसको कुत्ते का नाम क्या रखा उसने, कृष्ण रख दिया। अभी ये उसका लवर था, ये एक दिन गया उसका कुत्ता गुम हो गया था उस दिन, इसने कहा नहीं नहीं कृष्ण चला गया है, कृष्ण चला गया, कृष्ण को ढूंढो, कृष्ण को ढूंढो। अभी ये पहुंचा उसका जो बॉयफ्रेंड है, उसने कहा कृष्ण को ढूंढो, कृष्ण को ढूंढो, तो ये भी सोचा इसने बोला है तो मुझे करना पड़ेगा। कई बार व्यक्ति तारे ला के देता है तो कुत्ता क्यों नहीं ढूंढ सकता, अभी इसको पता नहीं कि एग्जैक्टली कुत्ता है या क्या गुम हो गया इसका, तो कृष्ण को ढूंढने के लिए भी निकला, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण कहाँ हो, और ये भी गलियों में ढूंढ रहा था। और उसी समय ये हरे कृष्णा वाले कीर्तन करते हुए आ रहे थे, नगर संकीर्तन निकल रहा था वहां से, और ये लोग भी क्या बोल रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये जो नगर संकीर्तन जा रहा था, सब लोग हाथ ऊपर करते हुए नाम संकीर्तन कर रहे थे, मृदंग करता बज रहे थे, कुछ नाच रहे थे, तो इसने देखा अच्छा ये भी तो ये गया, एक भक्त बोलते जा रहा था तो ये उसके पास गया, कहते अच्छा आप भी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, ये बोला उसको जो भक्त को, आप कृष्ण, आप भी कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, भक्त वैसे भाव में होते हैं, भक्ति में आने के बाद हम साधारण व्यवहार करना भूल जाते हैं, पता है आपको, असाधारण सी बातें करेंगे, असाधारण से हटपटांग हरकतें करेंगे, कैसे हम कई बार साधारण जो मनुष्य है ना, वो अच्छा आचरण करता है, बोलता है, सुनता है, तो वैसे ये कहता है हाँ सारा जगत ही कृष्ण को ढूंढ रहा है। अभी उसको बात करें, कम से कम नया व्यक्ति है, वैसे हम होते ना कई बार फैनेटिक हो जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं या कुछ प्रीचिंग करते हैं, या फिर कोई ट्रेन जर्नी में हो आप, कोई मिले तो उसके ऐसे के तैसे करते हैं, वो कोई देवताओं का नाम ले तो हम उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, तो देवतागण ये है वो है क्या क्या नहीं बोलते। तो ऐसे ही इसने कहा आप ही क्या, सारा जगत विश्व कृष्ण को ढूंढ रहा है। तो कहते अच्छा मैं भी ढूंढ रहा, अच्छा फिर इसको लगा मैं तो कृष्ण ही जानता हूँ, लेकिन ये शायद पूरा नाम जानते हो उसका, क्योंकि हरे भी है उसमें, कृष्ण भी है और क्या है राम भी है, पूरा नाम जानता है शायद वो व्यक्ति, वो उनको लगे सारे पूरा नाम जानते हैं, तो चलो उसने कहा चलो आप भी चलो हम सब मिलके ढूंढेंगे, तो ये भी गया उनके साथ। तो फिर ये और कहते हैं इसने सोचा अच्छा अरे ये ढूंढ रहे हैं, मैं तो इनको इन्होंने बोला कि हाथ ऊपर क्यों कर रहे हो आप, तो दूसरा भक्त बोलता है क्योंकि हाथ ऊपर करने से कृष्ण जल्दी मिल जाते हैं। तो ऐसे बोलते जा रहा था, उनका कलवर सेशन में महाराज सन्नय से अच्छे से बोल रहे थे स्टोरी को इस। तो कहते फिर उन्होंने कहा लेके लेके मुझे उनके साथ ही गया और फिर मंदिर के गेट में गया, कहते फाइनल, वो कहता है तीसरा भक्त कहता है फाइनली कृष्ण हमें मिल गए, देखो ये कृष्ण, अभी वो किसी और को ढूंढ रहा था लेकिन अभी फाइनली किससे मुलाकात हो गई उसकी, कृष्ण से, ओरिजिनल कृष्ण से। तो इस प्रकार से ये भक्त भी यहाँ ब्रूस कह रहा है मैं तो हरे कृष्ण की खोज में था और हम भी अपने जीवन में कृष्ण के ढूंढ रहे हैं जैसे, तो वो सन्यासी कहते इस प्रकार से मैं भक्त बना, वो ढूंढ में कुत्ते को रहा था लेकिन सीधा कहा यहाँ कृष्ण के पास आ गया। तो वैसे वो कहते हैं अपना स्थान छोड़कर मैं एवोनी बी पहुंचा, तब मैंने पूरा रास्ता तय करके ह्यूस्टन स्ट्रीट पहुंचने का निश्चय किया, जब मैं फर्स्ट स्ट्रीट पहुंचा तब दाहिनी ओर मुड़ गया और फर्स्ट स्ट्रीट पर चलता हुआ सेकंड एवेन्यू पहुंच गया। पूरे फर्स्ट स्ट्रीट में मैं पोर्टो रिकन सामान के स्टोर देखता आया और तब एक गिरिजाघर आया जहाँ हर व्यक्ति खड़ा था, जोर जोर से गा रहा था और तंबूरा बजा रहा था। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रीट में मैं जब आगे बढ़ा तो मेरे मन में ऐसा भाव उदय हुआ कि मैं संसार त्याग रहा हूँ, ठीक उसी तरह का भाव जो उस समय उदय होता है जब कोई हवाई अड्डे की ओर हवाई जहाज पकड़ने के जाता है। मैंने सोचा मैं अब अपना एक अंश पीछे छोड़ रहा हूँ और मैं किसी नई जगह जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं सेकंड एवेन्यू पहुंचा तो मैं हरे कृष्ण नहीं पा सका। वहां एक गैस स्टेशन था, पेट्रोल पंप को वहां क्या कहते हैं, गैस स्टेशन। उसके आगे चलता हुआ मैंने एक छोटे से स्टोर फ्रंट के पास से गुजरा, वहां केवल मैचलेस गिफ्ट का संकेत था। तब इनको लगा ये हरे कृष्ण कुछ बड़ा कुछ होगा, तो इनको क्या पता एक छोटे से दुकान का अगला हिस्सा है। तो ये वहां पहुंचे, वहां पड़ा मैचलेस गिफ्ट। तब मैं पीछे लौटा तो स्टोर पर आया, उसकी खिड़की में एक शाम श्वेत संकेत मिला जिस पर लिखा था भगवद गीता पर प्रवचन। मैं स्टोर फ्रंट में घुसा और वहां जूतों का ढेर देखा। मैंने अपने जूते उतारे और अंदर जाकर पीछे बैठ गया। अब ये स्टीव, ये उनका इंट्री था ब्रूस का, अभी स्टीव का स्टीव कहते हैं। मेरी ऐसी धारणा थी कि ये ऐसा वर्ग है जो सुप्रतिष्ठित हो चुका है और जिसकी बैठकें कुछ समय से होती आ रही है। मैं अंदर पहुंचा और फर्श पर बैठ गया और एक लड़का जिसने अपना नाम राय बताया मेरे प्रति बहुत शिष्ट और मैत्रीपूर्ण लगा। वो उन लोगों जैसा प्रतीत हुआ जिन्हें इन बैठकों का अनुभव हो चुका था। उसने मेरा नाम पूछा और मुझे बड़ी राहत मिली। एकाएक स्वामी जी बगल के दरवाजे से कमरे में आए। वे केसरी रंग की धोती पहने थे, कमीज नहीं पहने थे, एक लंबे दुपट्टा की भांति कपड़े का टुकड़ा सा लगता था जो उनके दाएं कंधे से ऊपर एक गांठ में बंधाया। उनकी भुजाएं, बाया कंधा और छाती का कुछ भाग खुला था। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे मन में बुद्ध का विचार आया। होता है ना सन्यासी ऐसे वस्त्र धारण करता है, कुर्ता नहीं पहनता। तो ये स्टीव ने जब देखा पहली बार इस वस्त्र में शांत मुद्रा, तो उनको लगा ये शायद बुद्ध के समान है। ब्रूस कहते हैं फर्श पर लगभग 15 लोग बैठे थे। लंबी दाढ़ी वाला एक व्यक्ति सामने दाहिनी ओर दीवार से टिका बैठा था। कुछ समय बाद दूसरी ओर का दरवाजा खुला और स्वामी जी प्रविष्ट हुए। जब वे अंदर आए तो उन्होंने ये देखने के लिए सिर घुमाया कि श्रोताओं में कौन कौन लोग थे। तब उन्होंने सीधे मुझे देखा। किसको देखा? ब्रूस को। तब उन्होंने हमारी आंखें मिली, ऐसा लगा मानो वे मुझे आंक रहे हो। मेरे मन में ऐसा भाव जगा मानो मुझे देखते हुए स्वामी जी की पहली बार फोटो खींचा जा रहा हो। थोड़ी देर का विराम हुआ तब वे बड़ी शालीनता से मंच पर चढ़कर बैठ गए और उन्होंने मंजीरों का एक जोड़ा उठाया और कीर्तन आरंभ कर दिया। ये कीर्तन एक ऐसी वस्तु थी जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। हाँ, तो हमें सोचना चाहिए शुरुआत में सबसे अधिक मुझे किस चीज ने प्रभावित किया, कीर्तन ने या दर्शन ने या प्रसाद ने या फिर भक्तों के संग में संग ने। ये कीर्तन ऐसी वस्तु थी जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। ये मेरे अब तक सुने संगीत में से सर्वोत्तम संगीत था और ये अर्थपूर्ण था। आप उस पर सचमुच ध्यान केंद्रित कर सकते थे और हरे कृष्ण शब्दों की पुनरावृत्ति से आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती थी। मैंने उसे तुरंत आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में स्वीकार कर लिया। एक और पैराग्राफ पढ़ता हूँ। चक कहता है मैं स्टोर फ्रंट में दाखिल हुआ। वहां सख्त फर्श पर बिछी एक घास की चटाई पर एक व्यक्ति बैठा था जो पहली दृष्टि में मुझे वह न पुरुष लग रहा था न स्त्री, किंतु जब उन्होंने मेरी ओर देखा तो मैं उनसे आंखें मिलाकर उनकी ओर नहीं देख रहा था। उनकी आंखों में ऐसा तेज और जगमहाट थी। उनके शरीर का वर्ण स्वर्णिम था, गाल गुलाबी थे, उनके कान बड़े बड़े थे जो उनके चेहरे का एक भाग थे। वे 3 लड़ियों की माला पहने थे, एक लड़ी गले तक थी, दूसरी गले के कुछ नीचे और तीसरी उनके वक्षस्थल पर पहुंचती थी। उनका ललाट विशाल था जो उनकी चमकदार आंखों के ऊपर उभरा था। उनके माथे में बहुत सी झुरियां थी, उनकी बाहें पतली और लंबी थी। उनका मुख सुसंपन्न भरा पूरा शाम अरुण और मुस्कान रंजित था। उनके दांत उनके नेत्रों से अधिक चमकदार थे, वे पालथी मारे बैठे थे। ऐसा मैंने कभी किसी योग की पुस्तक में नहीं देखा था और न किसी योगी को ऐसा आसन लगाते देखा था। ये बैठने की मुद्रा थी। उनका दाहिना पैर उनकी जांघ के ऊपर से होता हुआ बाह्य नितंब के पास निकला था और एक घुटना ठीक उनके सामने दूसरे घुटने पर टिका था। उनकी प्रत्येक अभिव्यक्ति और चेष्टा उन सभी व्यक्तियों से भिन्न थी जिन्हें मैंने इससे पहले कभी भी देखा था। मुझे लगा कि इनका भी कुछ अर्थ है जिसे मैं नहीं जानता था। उनका उद्भव ऐसी संस्कृति और ऐसे मनोभाव से था जो इस संसार से परे की वस्तु थे। उनकी एक तरफ एक तिल था और उनकी एड़ी पर एक विशेष प्रकार की गांठ थी, ऐसी गांठ जो पंजा लड़ाने वाले कुशल व्यक्ति की अंगुली के ओर पर उभरने लगती है। वे बिना सिला वस्त्र धारण किए थे जो केसरिया रंग में रंगा था। उनकी प्रत्येक वस्तु मोहक थी। अपनी समग्र तेजस्विता में वे कमरे में बैठे नहीं लगते थे, वरना जैसे किसी अन्य स्थान से उनका प्रक्षेपण हुआ था। उनका वर्ण इतना चमकदार था कि वह बहुरंगी चलचित्र लगता था और फिर भी वे साक्षात वहां आसीन थे। मैंने उन्हें बोलते हुए सुना, वे सीधे मेरे सम्मुख बैठे थे। फिर भी लगता था कि यदि मैं उनका स्पर्श करने के लिए बढ़ूं तो वे वहां बैठे नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही ये भी था कि उनको देखना किसी सूक्ष्म या अमूर्त वस्तु को अनुभव करने के समान नहीं था, वरन एक अत्यंत भावप्रवण व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव था। तो इस प्रकार से ब्रूस और चक या स्टीव अपना अनुभव बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने श्रील प्रभुपाद को पहली बार देखा या कैसे इस आंदोलन के पहली बार संपर्क में आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद लीलामृत की, श्रील प्रभुपाद की। प्रेमानंदे।